रुख यहाँ, लेक्चर नंबर 6। ओम नमः सिद्धेश, ओम नमः सिद्धेश, ओम नमः सिद्धेश,
ओम शुद्धात्मने
नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोए सौवसाहूणं, अज्ञानतिमिरांधानां ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सुख यहाँ नामक पुस्तक के 17 नंबर के पृष्ठ पर हम आ गए हैं, 1717। ये नया पैराग्राफ नीचे का, उसको हम यहाँ से पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ तो हमने 5 नंबर का श्लोक पढ़ा था, वहाँ ये बात लिखी थी कि मैं अपने ही राग की वेदना से विंधा हुआ हुए, यानी उसी से मैं दुखी हूँ। और हम जो उसके लिए कर रहे हैं, वो सारे अपने दुख का इलाज कर रहे हैं, दूसरे का कोई उपकार कर ही नहीं सकता, ये बात चल रही थी। अब यहाँ हम पढ़ते हैं, सोचो यदि मैं ऐसा न करता, क्या कहते हैं ऊपर क्या लिखा था कि, तो ये तो एक स्टोरी बताई ना, जैसे अब्राहम लिंकन की बात है, ये जा रहे थे और कोई घोड़ा, वहाँ घोड़ा लिखा है, अन्य कोई जानवर जो कुछ फंसा हुआ था उसको निकलने में कपड़े खराब गए वगैरह वगैरह। तो कहते हैं यदि मैं ऐसा न करता, तो यहाँ आकर जब भी बीच बीच में उसके तड़पने का वह दृश्य याद आता, तब मैं उसी समय वेदना से बिंध जाता। अतः मैंने अपनी वेदना से बिंध कर ही उसको बाहर किया। ये उन्होंने उसका कारण बताया कि मैंने अपने दुख का इलाज किया। झगड़ा आदि होने पर व्यवहार में ऐसा कहते कि देखो भाई, इसके ऊपर मैंने कितना उपकार किया, व्यापार के लिए रुपया दिया, सब सुविधाएं दी, किंतु आज है कि मेरी बात ही नहीं सुनता, मुझे कुछ समझता ही नहीं है। मैंने किसी को बहुत मदद की है और फिर वो सुनता नहीं है, या कोई विरुद्ध कुछ कर देता, ऐसा भी होता है ना। नौकर के लिए बहुत सारे मालिक ने उसके लिए पैसा दिया, उसको अच्छी तरह से रखा जो कुछ है, और उसने अपना धंधा खोल दिया और इसके सामने दुकान दूसरी खड़ी कर दी, ऐसे भी होता है बहुत देखते हम। तो कहते यहाँ पर ऐसी पीड़ा अज्ञान से, भ्रम से, कर्तृत्व बुद्धि से हुई। सोच कर को देखो, खुद ही तो तेरे अंदर राग उत्पन्न हो रहा था जिससे तूने चेष्टा की, उपकार क्या किया। यानी उस समय उसको मदद करने का राग अपने में उत्पन्न हुआ और हमने उस राग का इलाज किया। यहाँ नौकर की बात हो, बच्चे की बात हो, या अन्य कुछ भी, हम बच्चों के लिए करते, उसके लिए नहीं करते, अपने राग के लिए कर रहे हैं। हमें उनके प्रति प्यार उमड़ता है और हम ही उनके लिए कर रहे हैं, है ना। और फिर बाद में ऐसा कि मैंने इतना किया और अब मेरी बात सुन नहीं रहा, दुख क्यों हो रहा है। अपेक्षा कुछ बनी रहती है उसके पीछे।
हम जब छोटे थे तब हमको एक कथा बताते थे, एक बाई थी, उसके लड़के ने शादी की। हाँ, तो उसके लड़के ने शादी की तो वो जब बहू आई तो वो झगड़ा कर करके अलग हो गई। तो एक दिन उसने कहा अपने पति को कि मुझे तेरे माँ का कलीजा खाने का है। तो अब क्या करें, गया वो और उसने कलीजा निकाला और जोर जोर से भागते निकला, इतने में वो कलीजा नीचे गिर गया। तो उसने वो कलीजा बोला, बेटा तेरे को तो कुछ नहीं लगा ना। तो उसको लगा कि देखो, जिसका कलीजा मैं ले जा रहा हूँ वही मेरे पे इतनी दया करता है। तो उस समय हमको लगता था, अरे रे, ऐसे शुभभाव हमारे कब होंगे। यहाँ तो कहते हैं तू किसी को उपकार नहीं कर रहा है, तेरे राग का पोषण कर रहा है। इतना उत्कृष्ट वो कथा पहले के जमाने की हम सुनते थे तो ऐसा गदगद होता था। तो अभी तो स्वामी जी तो उसको सब फ्लैट कर देते, स्वामी जी नहीं ये तो सहजानंद जी कहते तू तेरे राग का पोषण कर रहा है, ऊपर का क्या कर रहा है इधर।
तो कहते ऐसी पीड़ा अज्ञान से भ्रम से कर तो तब बुद्धि से हुए, यानी जो हमने किया तो उसकी कर्तापना देखो, मैंने इतना उपकार किया, सोच कर तो देखो खुद ही तो तेरे अंदर राग उत्पन्न हो रहा था जिससे तूने चेष्टा की, उपकार क्या किया। वस्तु का स्वभाव ही ऐसा है कि खुद ही में खुद का परिणमन हुआ करता है, राग द्वेष का परिणाम भी अपने में हुआ, और उस समय जो कुछ प्रयत्न रूप कार्य हुआ योग और उपयोग अपने में हुआ, पर में तो कुछ हुआ ही नहीं, उसने किया ही नहीं। एक किसान था, वो उसकी पत्नी थी, पत्नी चतुर थी, जरा अशिक्षित छोटे पुरुषों की ऐसी भावना रहती है कि जब तक औरत को पीटा न जाए तब तक उन पर रुआब नहीं गालिब होता। अतः किसान अपनी औरत को पीटने के लिए तरीके सोचता रहा था, किंतु वह इतनी चतुर थी कि कभी अवसर ही नहीं देती थी। अतः एक दिन किसान ने खेत में जाकर एक बैल को उत्तर की दिशा में मुंह करके खड़ा कर दिया, दूसरे को दक्षिण की दिशा में, फिर उनके कंधों पर ज्वार रखकर हल फंसा कर खड़ा सोचने लगा, आज जब भी वह रोटी देने आवेगी तो अवश्य ही ऐसी कोई न कोई उल्टी बात कहेगी जिससे कि मैं उसकी पिटाई कर सकूंगा। निश्चित समय पर वह आई तथा दूर से ही यह दशा देखकर सोचने लगी, आज यह क्या बात है, वैसे मेरे पति का दिमाग भी खराब नहीं, कोई ऐसी बात ही नहीं जिससे यह ऐसा करे, कोई न कोई बात अवश्य है। अतः वह मन को समझाती हुई किसान को रोटी देती हुई बोली कि चाहे उल्टा जो तो चाहे सीधा जो तो, अपना काम तो रोटी दे जाने का है, अतः लो ये रोटियां, और इतना कहकर रोटी देकर चली गई। पीछे को मुड़कर भी नहीं देखा, ना रुकी ही। सो भैया, निश्चय नहीं की दृष्टि लगाकर सोचो तो पता लगेगा कि यह पदार्थ इतना ही है तथा इसका परिणमन इतने में ही है। ये दृष्टांत इसमें कैसे फिट किया पता नहीं लगा मुझे। हाँ,
यानी वो अपना काम अपने से
अपने
मतलब
हाँ बस हाँ। वो उसका परिणाम उतने में और किसी है, किसी भी पदार्थ से मेरा भला बुरा नहीं, इस प्रकार विचार करने से दुख स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। प्रत्येक पदार्थ स्वतंत्र है, वह स्वयं में स्वयं के लिए ही परिणमन करता है। ये तो बिल्कुल वस्तु का सिद्धांत है, वस्तु की व्यवस्था है कि प्रत्येक वस्तु अपने में ही परिणमन कर रही है और अपने के लिए कर, पर के लिए कोई कर ही नहीं सकता कुछ। स्वतंत्रता का लक्षण है सद्भाव या अद्भाव रूप निमित्त पाकर स्वयं का स्वयं में ही परिणमन। ये निमित्त पाकर ये तो उसका ज्ञान कराने के लिए कहा है, तो निमित्त नहीं आया तो रुका है, इसी बात नहीं है, बिल्कुल स्वतंत्र है। इतना ज्ञान यदि आ जावे तो हम भी भगवान के परिवार में शामिल हो जावे, उनकी ज्ञान गोष्ठी के सहवासी हो जावे, और यदि हम में वस्तु स्वातंत्र्य की दृष्टि नहीं जगी तो हम उनसे दूर हैं, उनके आनंद से परे हैं तथा स्वयं से भी दूर हैं। जब तक वस्तु व्यवस्था नहीं पहचानते तो हम अपना भी अनुभव नहीं कर सकते, इसलिए कहते स्वयं से भी दूर हैं। अपने आप के स्वभाव की उपासना करनी चाहिए, ये हमने देखा था समाधि तंत्र में भी, आत्मा ही अपना स्वयं का उपास्य है और उसी की उपासना करनी चाहिए, यानी उसी में जानकर उसी में लीन हो जाना चाहिए। परंतु ऐसी दृष्टि प्रायः किसी की नहीं होती, ज्ञान खुद ज्ञान के स्वतः सिद्ध स्वरूप को जानने लगे, यानी ज्ञान खुद ज्ञान के स्वतः सिद्ध, ये स्वतः सिद्ध एक शब्द है, ये ज्ञान किसको जानने लगे, अपने ही स्वतः सिद्ध स्वरूप को। इस दृष्टि से विरले ज्ञानी जीव ही ऐसी दृष्टि करते हैं, यानी ज्ञानी को ही ये पता चलता है या वही ऐसी दृष्टि करते हैं, यानी ज्ञानी तो विरले ही है ये बात कहने, बाकी पूरा जगत तो जिसके एवरेज ऐसे ही चलता है। यहाँ पर भी मोह की ही बात चिल्लाते हैं, किंतु ज्ञानी जीव किसी की बात नहीं सुनते, जो विवेक मन में आता है वही करते हैं। उद्धार की भावना करने वाला बहुतों की प्रशंसा न चाहकर दो चार ज्ञानी पुरुषों की प्रशंसा की आकांक्षा रखता है, यह आत्मा स्वतः सिद्ध है, अपने में परिपूर्ण है। और यदि ऐसा विचार करे कि अज्ञानी जीव प्रशंसा करे तो क्या लाभ, और ज्ञानी जीव प्रशंसा करे तो बहुत उत्तम है। इस प्रकार विचार कर अपना कल्याण करे, क्योंकि करता कोई किसी का कुछ नहीं। देखो ये क्या कहते, कोई प्रशंसा करे नहीं करे उससे अपना कुछ लेना देना नहीं। प्रशंसा करे तो हम बढ़ गए, कोई नहीं कुछ अपने को पूछे तो हम छोटे हो गए, ऐसी बातें तो है ही नहीं। ऐसे भी ज्ञानी होगी कि दुनिया को पता ही नहीं है ऐसे ज्ञानी है। मुनि भी हो, कोई मुनि तो प्रसिद्धि में है और कोई ऐसे हो किसी कोने में किसी गांव में, और वो अपना ही कार्य कर रहे हैं अपने मेरे गांव में, नहीं जंगल में। अभी हम गांव में इसलिए कहें कि उनका आना जाना रहता है, इस हिसाब से एक में एक जगह तो रहता नहीं, कहीं पर घूमना होता है। परंतु ऐसे भी है ना कितने ही जीव, जब तक हमने उनको नहीं देखा तो हमें क्या पता दुनिया के कौन से कोने में क्या बातें हो रही है। मैं भी अपनी राग की वेदना से भिन्नकर अपनी ही कषाय पूर्ति का कार्य रूप उपकार कर रहा हूँ। क्या कहते हैं, राग की वेदना है उससे दुखी है और क्या कर रहे हैं कार्य, कषाय पूर्ति का कार्य। अतः मैं वस्तु के स्वरूप को ध्यान में रखकर अपने में, अपने लिए, अपने आप सुखी हूं। वो लिखा ना, श्याम स्वस्मय से सुखी स्वयं। मैं यहां जो कुछ कर रहा हूं, वह अपनी राग वेदना से पीड़ित होकर अपनी शांति के लिए अपनी चेष्टा कर रहा हूं। मैं पर का न उपकार करता हूं और न अन्य किसी प्रकार का परिणमन करता हूं, पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ब्रह्मपूर्ण परकर्तृत्व की दृष्टि में अशांति ही बसती है। क्या कहते हैं, पर का कर्तृत्व ने मैं पर का कुछ कर सकता हूँ ऐसी मान्यता, ये कैसी है, ब्रह्मपूर्ण है। और उससे क्या होता है, तो कि उससे अशांति ही होती है। मैं जैसा सहज स्वरूप मैं हूँ वैसा ही मानने में मेरी शांति है। यानी हमारा स्वरूप तो सहज स्वरूप में ही है और ऐसा हम मानेंगे तो उसी में अपनी शांति है। यही विचार जीवों को सदा करना चाहिए। अब 6 नंबर का श्लोक हम पढ़ेंगे। याति नेतो न चायाति जातु किंचिच्चिदन्यत खिन्नो हीनादिकं मन्य स्याम स्वस्मै स्वे सुखी स्वयं। न यहां से, यहां से यानी निज आत्मा से, यहां से नहीं यहां से, न यहां से यानी निज आत्मा से कभी कुछ जाता है और न अन्य पदार्थ से कुछ आता है। आशा बहन आपको बताना है ऐसी कौन सी आत्मा में शक्ति है। यहाँ क्या लिखा, ना कुछ यहाँ से जाता है ना कुछ इसमें आता है। कोई शक्ति का नाम सुना आपने, त्याग, त्याग उपादान, बहुत अच्छा, त्यागोपादान, त्याग और उपादान ही ग्रहण करना, शून्यत्व शब्द लगाना। ना किसी का त्याग होता है ना किसी का ग्रहण होता है, यहाँ लिखा है ना, न यहाँ से कभी कुछ जाता है और न अन्य पदार्थ से कुछ आता है। क्योंकि आत्मा में या क्या, प्रत्येक द्रव्य में त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अपने में पूर्ण है। वो द्रव्य का कुछ अंश नहीं पर में जाता ना पर का कुछ उसमें मिल जाता। इसलिए यहाँ क्या लिखा, न यहाँ से कभी कुछ जाता है न अन्य पदार्थ से कुछ आता है। मैं अपने को कम या अधिक मानता हुआ व्यर्थ खिन्न हुआ हूँ। देखो ये इसमें भी लिखा है रत्नगण शावकाचार में, मिथ्या ज्ञान का लक्षण क्या मानता है, क्या है, समय ज्ञान अधिकार में लिखा है, कम अधिक या विपरीत जानना, निकालो यहाँ रत्नगण शावकाचार है आपके पीछे। हाँ, राइट साइड में रत्नगण शावकाचार्य में सम्य ज्ञान अधिकार में लिखा है, राइट साइड में लाल पुस्तक है, एकदम राइट साइड में, बीच वाले कंपार्टमेंट, बीच वाले को, हाँ राइट साइड एकदम राइट में
रत्नकरण शावकाचार लिखा है ना,
रेड कलर की होगी, एकदम राइट साइड में,
बदल गया क्या?
हाँ हाँ वही वही, हाँ देखो कोई भी श्रावकाचार निकालो
तो दो को कितना टाइम,
पहला अधिकार सम्यक दर्शन अधिकार होता है, हमें तो लगता है यार ये तो इसमें तो आचरण की बात होगी,
शरणागत
श्रावकाचार कोई भी निकालो, ये आचार के ग्रंथ है, फिर पहले अधिकार का नाम है सम्यक दर्शन अधिकार, कोई भी निकालो आप, दूसरा है सम्यक ज्ञान अधिकार, देखो ये प्रथम वो तो किसी दो तीन पेज का है, एक दो तीन पेज का ही है वो तो, देखो पहले पहले सम्यक ज्ञान का स्वरूप बताया, दूसरे पैराग्राफ में बताते हैं मिथ्या ज्ञान किसको, जो वस्तु का स्वरूप को न्यून जाने, न्यून यानी कम जाने, वो मिथ्या ज्ञान है, उसने क्या आत्मा का स्वभाव कैसा अनंत ज्ञान स्वरूप है, उसने क्या माना न्यून यानी मैं इतना सूक्ष्म ज्ञान वाला मैं हूँ ये उसने जान लिया, जाना माना उसमें जानने की बात है यहाँ पर, तो वो मिथ्या ज्ञान हुआ, कोई अपने को अधिक जानता है उससे अधिक जानता है, यानी आत्मा का स्वरूप कैसा है स्वभाव कैसा है ज्ञान दर्शन सुख सत्ता वगैरह 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 वगैरह, परंतु इसने क्या माने अधिक क्या जाना, मैं काला गोरा यानी मेरे गुण तो मेरे में है पर ये स्पर्श रस गंध वर्ण भी मेरे में है, उसने अधिक जाना, डोर चाहना है ना तो इसलिए अधिक जाना, तो वो भी मिथ्या ज्ञान है। हाँ
कि मैं तो सिर्फ मेरा ही क्या कहते हैं, मैं तो सिर्फ मेरा ही परिणमन करता हूँ लेकिन मैं पर का भी कर सकता हूँ, अधिक हो गया।
देखो यहाँ क्या लिखा है, वस्तु के स्वरूप को अधिक जाने सोहू मिथ्या ज्ञान है, ये उनकी भाषा उसकी जमाने के धुंधारी, जैसे आत्मा का स्वभाव तो ज्ञान दर्शन सुख सत्ता अमूर्तिक है, ताकू ज्ञान दर्शन सुख सत्ता अमूर्त भी जानना और पुद्गल के गुण रूप स्पर्श गंध वर्ण रस मूर्तिक हुए भी, यानी उसने ज्ञान दर्शन वाला भी जाना और अपने को मूर्तिक भी जाना, काला गोरा वगैरह वगैरह, उसने क्या किया अधिक जाना, सो अधिक जानने ते मिथ्या ज्ञान है। तीसरी बात तो विपरीत ज्ञान हो मिथ्या ज्ञान है, जैसे कोई कोई सीप है और उसको लगता है ये चांदी है, चमक रही है ना सफेद सफेद, उसने विपरीत जाना, ये भी मिथ्या ज्ञान हुआ, ये तो दृष्टांत देके समझा। तो जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसे जानना वो सम्यक ज्ञान, तो न्यून जानना अधिक जानना और विपरीत जानना और संशय रूप जानना, ये चार प्रकार का मिथ्या ज्ञान कहा, क्या क्या बताए, कम जानना यानी हीन जानना, अधिक जानना, विपरीत जानना या संशय रूप जानना, ये चार प्रकार बताए वहां पर रत्नकरण शावकाचार्य के सम्यक ज्ञान अधिकार में। यहाँ पर क्या लिखते हैं देखो, मैं अपने को कम या अधिक मानता हुआ व्यर्थ खिन्न हुआ हूँ, यह मान्यता की भी बात उसके साथ ले लिए, अब सच्ची दृष्टि वाला होता हुआ मैं अपने में अपने लिए स्वयं सुखी हूँ, अपने को कम क्यों मान रहा है, अरे मेरे पास ज्ञान नहीं है धन नहीं है, कम माना किसके कारण, अपने को हीन या अधिक मान रहा है, मेरे पास बहुत धन होगा तो मैं और उनसे कुछ अधिक हुआ, ये गड़बड़ी हो गई ना, पर का अपने में मिलाया संयोगों के कारण मैं बड़ा हूँ माना, यानी उसमें बहुत सारी भ्रमणाएं उसके साथ चल रही है। तो सच्ची दृष्टि वाला होता हुआ, सच्ची दृष्टि यानी यथार्थ मान्यता वाला होता हुआ मैं अपने में अपने लिए स्वयं सुखी हूं, यह आत्मा स्वतः सिद्ध है, यह अपने में यह आप अपने में परिपूर्ण है, ये दूसरे के कारण यह इसकी पूर्णता होने वाली नहीं है, या पर्याय में पूर्ण होने पर मैं पूर्ण हो जाऊंगा ये भी बात नहीं है, आत्मा स्वतः सिद्ध है, प्रत्येक द्रव्य स्वतः सिद्ध है वो बनने वाले की बात है ही नहीं यहाँ पर, यह अपने आप में परिपूर्ण है, जो भी पदार्थ है, जो भी पदार्थ है ने, छह द्रव्यों की बात आ गई, देखो जो भी पदार्थ है, भले पुद्गल का परमाणु भी क्यों ना हो, वह अपने में पूर्ण ही होता है, अधूरा नहीं। ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ बताए उन्होंने। मैं भी अपने में परिपूर्ण हूं, भले ही अशुद्ध योग्यता में बाह्य पदार्थ का परिणमन पाकर उल्टा परिणमन हो, किंतु अधूरा अधपूरापन नहीं है। यह अधूरापन मोह से होता है, यानी ये भ्रांति है, मान्यता में है। द्रव्य में तो कोई अधूरापन नहीं होता, द्रव्य तो परिपूर्ण है। हमारी इच्छा के अनुकूल, देखो ये पर्याय तो एक उसका बहुत छोटा अंश है, और उसका पूरा स्वभाव उस पर्याय के पीछे पड़ा है। और उसने अपने क्या भूल की, पर्याय में जो है उतना अपने को माना, परंतु पर्याय और स्वभाव मिलकर पूरी वस्तु हो गई ना। वहां पर, वहां पर भी द्रव्य तो पूरा का पूरा है, पर्याय में क्या चल रहा है, कितना चल रहा है, उससे कुछ लेना देना नहीं। द्रव्य तो पूरा का पूरा है, उस समय भी द्रव्य में कोई अधूराश नहीं है। हाँ, पर्याय में जो कुछ विपरीत बना होगा, जो अंश थोड़ा प्रकट हुआ, जो कुछ होगा, परंतु वहां पर भी द्रव्य पूरा का पूरा विद्यमान है। यह हमारी इच्छा के अनुकूल कल्पना है, नहीं तो प्रत्येक पदार्थ पूर्ण है और परिणमन भी पूर्ण है। असीम विकास होने को पूर्ण कहते हैं, अधूरापन उसे कहते हैं। कि ज्ञान में शक्ति तो अनंत लोक व अनंत आकाश को जानने की है। क्या कहा? अनंत लोकालोक की बात आई कि नहीं? केवल हम ही नहीं कह रहे हैं, स्वामी जी ने तो बहुत बार कह दिया ही है, अब ये भी कह रहे हैं सजान जी भी। क्योंकि आगम के अनुसार कहने वाला तो एक ही बात कहेगा ना, कि शक्ति कितनी है ज्ञान में। देखो जो गुण होता है उसकी शक्ति, उसका स्वभाव तो अमर्यादित होता है, तो उसमें कोई लिमिट नहीं होती। तो एक ही लोकालोक है, जो है तो उसको जानता है, परंतु उसकी शक्ति कितनी है। ऐसे अनंत अनंत है तो भी जानने की शक्ति पूरी पड़ी है उसके अंदर। तो कहते ज्ञान में शक्ति तो अनंत लोक व अनंत आकाश। अनंत लोक और अनंत आकाश है, आकाश है पूरा ही हो गया ना, लोकालोक मिलकर आकाश हुआ, यहाँ लोक भी होता है, अलोक भी होता है, जानने की है। किंतु प्रत्येक समय परिपूर्ण परिणमन पूर्ण ही है, पर्याय भी पूर्ण है। देखो पर्याय, देखो पर्याय की शक्ति कम है वो बात अलग है, पर वहां पर्याय है कि नहीं है। प्रत्येक समय में उत्पाद और व्यय चल रहा है, तो उत्पाद पूरा है कि उत्पाद अधूरा है? जिस किसी पर्याय रूप से हो रहा है, परंतु उत्पन्न होने वाली पर्याय एक समय वाली, वो तो पूरी पर्याय है वहां पर, ये कहना चाहते। वो पर्याय में स्वभाव का कितना अंश प्रकट हुआ है उसकी बात नहीं लेनी, उसको अधूरा कहेंगे। ज्ञान में इतनी शक्ति है और हम अभी थोड़ा जान रहे हैं, ये हमारे वर्तमान पर्याय में कम जानने का कार्य हो रहा है, परंतु पर्याय जो हमारी जो कोई वर्तमान की वो पूरी है, ये कहना चाहते। जल अलग से अस्फित है, देखो कि पर्याय भी पूर्ण है, रागादि का परिणमन भी पूर्ण ही है। अतः जितने भी आत्मा है वे सब अपने में पूर्ण ही है, क्योंकि प्रत्येक पर्याय भले है वो तो उसका प्रकट अंश है, परंतु उसके पीछे पूरी द्रव्य की पूरी सत्ता, पूरी के पूरे सामर्थ्य विद्यमान है प्रत्येक पर्याय के पीछे। पर्याय तो बहुत छोटा अंश है। हाँ, रागादि का परिणमन भी पूर्ण है, इसका अर्थ क्या है, राग वाली भी पर्याय है, वर्तमान में राग की पर्याय है, तो वो भी एक पूर्ण समय वाली है, वो भी उत्पाद रूप परिपूर्ण है कि नहीं, उसका उत्पाद हुआ है कि नहीं हुआ। हम तो पूर्ण है ने क्या लेते हैं, वो केवल ज्ञान वो पूर्ण, वहां वो शक्ति की बात है। तो जो पूर्ण है ना अभी, वो द्रव्य के संपूर्ण भाग में है कि नहीं, ऐसा ले लो, वो एक समय की पूरी वहां पड़ी है कि नहीं पड़ी, जितनी उत्पन्न होनी उतनी पूरी की पूरी उत्पन्न हुई, उसकी उतनी योग्यता थी इसलिए उसको पूर्ण कहा, अपेक्षा समझो उसकी। अतः जितने भी आत्माएं वे सब अपने में पूर्ण ही है, किसी ने बनाया नहीं, जो आधा बना और आधा न बना, क्योंकि गुण और पर्याय मिलकर पूरा द्रव्य होता है, और यहाँ पर्याय भी है और पूरे गुण भी है, तो द्रव्य पूरा है कि अधूरा है? द्रव्य पूरा है, यही कह रहे। अतः मेरा कुछ भी गुण व पर्याय बाहर नहीं जाता तथा न बाहर से ही कुछ मुझ में आता है। पति पत्नी का आपस में जो प्रेम है, तो क्या उनके गुण एक हो जाते हैं? नहीं, बल्कि पत्नी की आत्मा उसकी आत्मा में पूर्ण है और पति की आत्मा पति की आत्मा में पूर्ण है। पिता अपने में पूर्ण है और पुत्र अपने में पूर्ण है। किसी का भी तत्व अन्य में नहीं जाता, किंतु क्या हो रहा है देखो, व्यर्थ ही यह प्राणी मोह के कारण नाना कल्पना करके, पुत्र नहीं होगा तो अरे हमें कुछ कमी है, किसी की शादी नहीं हुई अरे हमें कुछ कमी है, और फिर शादी हो गई और पत्नी मर गई तो हम अधूरे रह गए, अकेले हो गए, ऐसा लगता है कि नहीं? तो क्या कहते हैं, ये क्या किया उसने, मोह से व्यर्थ ही उसने अनेक प्रकार की कल्पनाएं की। तो व्यर्थ ही यह प्राणी मोह के कारण, और एक दूसरे से पूछेगी भाई, और वो भी उसके जो कुछ नहीं होगी उसमें कुछ कमी होगी, उसको देख देख के उसको ऐसा है, तुमको बच्चा नहीं है, हमको लड़की तो लोग खुश, तुमको लड़का नहीं है क्या, उससे तुम्हारा अधूरापन रह गया, ये उनको सूचित करना चाहते हैं। तो यह प्राणी मोह के कारण नाना कल्पना करके नाना प्रकार से क्लेश पाता है, यानी स्वयं ही कल्पना करता है, स्वयं ही दुखी होते हैं। संसारी प्राणियों में राग द्वेष के वश होकर छटनी करता है, यह मोही प्राणी है कि यह मेरा है, यह पराया है, आदि छटनी करते हैं ना, उसमें वो तो वेच नहीं करता है, हाँ? उसके भाग करता है, ये अच्छे ये मेरे हैं, ये पराने, ये मेरे लिए अच्छे हैं, अनुकूल है, ये प्रतिकूल, यहाँ लिखा है ना, ये मेरा है, ये पराया है। क्योंकि यहाँ प्रत्येक जीव अपने में स्वयं परिपूर्ण है, तो पति माता पत्नी मेरी है, तो हम मिलकर एक हो जाते हैं, या हम मिलकर अधूरापन पूरा होता है, ऐसा कुछ लगता है ना, वहां पर कल्पना करता है नाना प्रकार की। परिणाम में होता क्या है, यह मेरा है, वह अमुक का है, आदि तो कोई अभी बात नहीं, किंतु यह तो अंतरंग से ऐसा मानता है, अपने ऊपर अन्याय करता है, ये सब मोह के उबाल है, अन्य कुछ नहीं। उबाल समझते, उबरो
क्या कह रहे,
वो तो जाता है ना दूध, हाँ, उबाल।
मैं कुछ अलग समझ रहा था, बहुत खाना खाएगा मीठा मीठा श्रीखंड,
तो ओढ़कर
फिर वो जो ऊपर आता है,
नहीं मुंह के उबाल है,
वो यहाँ तक आता है,
वो बर्पिंग
में कड़वा कड़वा लगता है,
रिगर्जिटेशन कहते हो, हाँ,
है ना, मुंह का उबाल है,
नहीं ये उबाल है, नहीं वो उबलता है ना दूध, तो ऊपर आता है, हाँ, अंदर कुछ नहीं, खोखला है वैसा है। न सत्य ही है, दूसरे की आत्मा में और मुझ में कोई संबंध नहीं है।
कौन माने
आत्मा के गुण और पर्याय दूसरे में नहीं जाते, वो दूसरों के मुझ में नहीं आते। जो अपने आप को मानता है कि मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ, या गरीब हो गया हूँ, कमजोर हो गया हूँ, यह सब मोह के कारण ही है, तो आत्मा में क्या कम हुआ उस समय, हा? तो धन संपत्ति से मैं गरीब या मैं श्रीमंत हो गया, और शरीर का जो वहाँ बल हीन हो जाता है, मैं कमजोर हुआ, और वो बढ़ जाता है तो मैं बहुत अच्छा बलवान हो गया, ये उसकी कल्पना है। क्योंकि अभी हमने देखा ना, आत्मा से ना कुछ जाता है ना उसमें कुछ आता है, तो पहले मैं बलवान था, अभी कमजोर हुआ, ये कहाँ से हुआ, आत्मा में से ना कुछ गया ना कुछ उसमें आया है, ख्याल में है ना बात, ये उसकी भ्रम है, उसका भ्रम की कल्पना है। तो ये सब मोह के कारण ही है। ज्ञान आदि निज वैभव तो स्वरसतः बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। बढ़ेगा ही नहीं, पर्याय में उसका विकास होगा इसलिए बढ़ेगा कहाँ। वैसे स्वभाव में तो कुछ बढ़ने का सवाल ही नहीं है। व्यर्थ में मन खिन्न होता है, यहाँ तो ये सारे पदार्थ स्वयं परिणमनशील है, स्वतंत्र है, इनमें कोई किसी अन्य को किसी अन्य का कर्ता माने, स्वामी माने, तो यह मोह जाल का प्रभाव है। इस जाल में उलझ कर आनंद में कोई नहीं रह सकता। हम जब दुखी होते हैं तब अपने ही मिथ्या विकल्पों के कारण दुखी होते हैं। क्या कहा, कहते हम बहुत दुखी, हम बहुत दुखी, क्या करें, ऐसे कर्म किए तो भोगने पड़ेंगे, और फिर रोता रहता है ना। तो कहते हम दुखी हैं, एक तो कर्म पर, ये तो कर्म को है तो वो भोगना पड़ेगा, और ये संयोग है तो तेरे पर है, ये जान लो ना, भोगना क्यों पड़ता है, तू भोगना चाहता है और भोग रहा है मिथ्या कल्पना करके, और कुछ नहीं है। तो तू दुखी है तो अपने ही मिथ्या विकल्पों के कारण दुखी है, यह हम पर लगाया। हम जब दुखी होते हैं तब अपने ही मिथ्या विकल्पों के कारण दुखी होते हैं, अन्य कोई मुझे दुखी नहीं करता, वे विकल्प भी बाहर कुछ काम नहीं करते। क्या कहा, बाहर की परवस्तु में तो कुछ कर ही नहीं सकते, नहीं अपने में माथा मार रहा है, विकल्प कर रहा है। तो कहते बाहर कुछ काम नहीं करते, वे तो होकर मिट जाते हैं, क्योंकि नए नए विकल्प उठाता ही रहते, अपने में विकल्प ही होते रहते, होकर मिट जाते हैं। किंतु टेव यह पड़ गई है, ऐसी आदत पड़ गई है कि प्रत्येक आकुलता में यह दृष्टि रहती है, अमुक पदार्थ यदि यौन ही परिणमता तो मैं दुखी न होता। ये अपने दुख का कारण कहाँ से होता है, ये ऐसा हुआ इसलिए मैं दुखी, ये ऐसा नहीं होता तो मुझे दुख नहीं होता, ऐसा सोचता रहता है। पर से अपना परिणमन मानना मिथ्या तो है, यह है अज्ञ का नाच। नाच अज्ञानी का नाच है। जितना भी दुख होता है सब तेरे ही कसूर से होता है। यह प्राणी वस्तुत्व को नहीं पहचानता, न बाहर से कुछ मुझ में आता है, न मुझसे बाहर ही कुछ जाता है, अतः वे क्लेश करते हैं और दुखी होते हैं। जैसे कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा, यहां जो हो रहा है उसे होने दो, उससे मेरा क्या, इस प्रकार सोचने से मन चंगा हो जाता है। जब जीव अपने आप अपना ही परिणमन कर रहे हैं, सब जीव अपने आप अपना ही परिणमन कर रहे हैं, सब जीव क्या, सभी एक एक परमाणु भी हैं, सभी द्रव्य। सच बात तो यह है कि भैया भार रहित न होने तक वह श्रद्धा नहीं होती।
ये जो पर का करने वाला जो भार,
वो भार है, कर्तु तो बुद्धि का भार है, और ऐसे भार लेकर कोई निश्चिंत नहीं हो सकता, चिंता रहित हो नहीं हो सकता, तो अपना निश्चिंत होकर अपना अनुभव भी नहीं कर सकता, क्योंकि सारा बोझा लेकर घूम रहा है ना, इसने किया तो कुछ नहीं है, मान रहा है, ये मान्यता में सारा बोझ उठा रहा है। कहाँ, कठौती में गंगा, कठौती में नहीं, घर में गंगा है, मन चंगा है, मन अच्छा है तो अपने पास में ही कठौती में। देखो तीसरी लाइन पढ़ रहे थे, सदा विचारे कि मैं तो ऐसा वस्तु तत्व हूँ जिसका आकार नहीं, नाम नहीं, इतने मात्र ही हूँ, इससे अधिक नहीं। इस प्रकार कभी तो विचार करना चाहिए, अपने को निरखे, ऐसी श्रद्धा हो जाने पर फिर क्या विपदा है, फिर उसे संकट ही क्या है। जिस प्रकाश हुआ, जिस प्रकार औषधि से सब संकट दूर होते हैं, उसी प्रकार उक्त तत्व विचारने से सब विपदाएं नष्ट हो जाती है। ये प्राणी विषापहार मणि आदि प्राण रक्षा के साधनों को तो ढूंढते हैं, क्या कहते हैं, विष का अपहार करने वाला यानी विष उतारने वाला मणि रत्न विषापहार। हमने विषापहार स्तोत्र नाम सुना होगा आपने, विषापहार स्तोत्र वो कवि धनंजय का है ना। हाँ, उनका बेटे को देखो, ये मंदिर में पूजा पाठ कर रहे थे, उसके पत्नी को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि बच्चे को सर्प ने काटा है। हाँ, तो बुलाव भेजा तो फिर वो तो आए नहीं, किसी को नौकर को या किसी आदमी को भेजा तो आए नहीं, तो बहुत गुस्सा आया तो बच्चे को ऐसे उठा के उनके जाके आगे पटक दिया मंदिर में। तो उन्होंने ऐसे भगवान के स्तोत्र गाए हैं, तो विषापहार स्तोत्र प्रसिद्ध है, बहुत अच्छा है।
वो स्तोत्र पूरे होते होते वो बच्चा जैसे कि नींद में
वो तो उठकर भाग कर
घर पे गया। वो लेंगे अपने घर
विषापहार स्तोत्र
जर मिलता है क्या है? अच्छा,
देखो ये प्राणी विषापहार मणि आदि प्राण रक्षा के साधनों को तो ढूंढते हैं। तो हम कहते हम प्राण रक्षा के साधन को नहीं ढूंढते, ये कहाँ से मणि मिलेगा? अरे उस इस जमाने में जो कुछ रक्षा के साधन है, क्या क्या करते हैं, दवा लेके पहले से वो जमा करके रखते हैं कि कोई इंश्योरेंस निकालते हैं, कोई मेडिक्लेम निकालते हैं, जो कुछ है प्राण रक्षा के
साथ। दो दो लाख कर क्या, पांच लाख कर, पांच
मुझे सरला बेन ने पूछा था, ये अपने विचारिया ने नहीं क्या है ने कि क्या करेगा डॉक्टर, तो आजकल तो इतना खर्चा बढ़ गया, इतना है, क्या करोगे आप, कुछ होगा क्या करना है, तो बीमारी होगी तो क्या करने, सल लेना लेगी और क्या करना है, मरना तो है और करना क्या होता है, कोई मुझे बचाएगा, मैं इधर जाऊंगी तो बच जाऊंगी, ये मान्यता है जिसकी आयु है उसके उसके वैसे तो अभी बताए ना उसके उसमें रहने की योग्यता है तो उसके वैसे निमित्त भी मिल जाते। कहाँ सुबह आई थी बात, कब आई थी, कल आई थी, प्रवचन में आई थी,
सुबह ही आई थी तो ना।
नहीं नहीं उसकी आयु भी मैंने बोला, आयु की बात नहीं है यहाँ तो, उसकी तो योग्यता ली है यहाँ पर, ऐसा मैंने भी बताया, उस चीज की योग्यता होगी तो उसके वो ऐसा निमित्त भी सहज मिल जाते हैं। सुबह ही आई थी वो, मरण की बात आई थी ना उसमें। देखो हम यहाँ पढ़ रहे थे, लास्ट लाइन पढ़ी हमने, प्राण रक्षा के साधनों को तो ढूंढते किंतु हे प्रभु, अभी 20 पेज पर आना, तेरा स्मरण करने से ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं कि लोग देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं किंतु स्मरण नहीं करते। कौन से प्रभु का करना है, महावीर का करना है तो वो तो, क्योंकि हर एक जो धर्म वाला वो अपना अपना प्रभु उसका नाम अलग है। भारत में तो बहुत है, 33 करोड़ कितने होते हैं, यहाँ कहते वह परमात्मा अपने में ही तो है, उस प्रभु का स्मरण नहीं करता, कोई ये कहना चाहिए। किंतु यह मोही प्राणी व्यर्थ में ही अपने को छोटा बड़ा समझकर प्रभु दर्शन से वंचित रहता है, यानी अपने आप को जानने से रह जाता है। हे प्राणी अपने वस्तु स्वरूप को संभाल, तेरे सब संकट दूर हो जाएंगे। अपने आप को जानना है, संभालने का क्या है, वो तो रेडीमेड वहाँ वस्तु व्यवस्था पूरी अपने में संपूर्ण परिपूर्ण पड़ी है, ये अपने को जानने की कभी कोशिश ही नहीं करता। मोह की बात राग द्वेष के संकट को मेटने का उपाय नहीं अपितु संकट बढ़ाने का है।
क्या बात
है, ये राग द्वेष रूपी संकट है और मोह से क्या होगा, वो बढ़ते ही चले जाएंगे, उससे तो मिटने वाले नहीं है। ये राग द्वेष ही संकट है और मोह से वो संकट बढ़ने वाले हैं। अपनी सर्व परिणतियों से उपेक्षा करके सदा मैं अपने को अपने लक्ष्य में लेकर अपने में अपने लिए अपने आप सुखी होऊं। यह प्राणी दूसरों को देखता है कि अमुक बहुत स्वार्थी है, उससे अपने को क्या तात्पर्य? वह अपना परिणमन अपने में ही करेगा, खुद का ही काम करेगा, कोई किसी का कुछ नहीं करता। ऐसी दृष्टि रहने पर ही भला है। ऐसी दृष्टि कभी सत्संग में और कभी एकांत में वह जब चाहे करना चाहिए, जब चाहे ने हमेशा करनी चाहिए। ऐसी दृष्टि ने ऐसी सोच भी रखना है, ऐसा विचार भी करना है, ऐसी मान्यता हमेशा ही रखनी है। जब सहनन अच्छे होते थे उस समय समस्या जटिल न थी, आज के समय में बहुत कठिन है। एकांत में बलिष्ठ आत्मा ही रह सकता है। 10 आदमियों के बीच बैठकर भी आत्मा की ओर ध्यान जावे, ऐसा वस्तु स्वरूप अपनी दृष्टि में रहे तो कोई संकट नहीं। वहां यह हो रहा है, लोग क्या कहेंगे, यह सब परदृष्टि है। कुछ भी करना है तो लोग क्या कहेंगे, मन पहले तो उसी की बात सोचता है। वस्तु स्वरूप पर दृष्टि लगाने पर, दृष्टि लगाना है ना उस मान्यता में लेना, वस्तु स्वरूप पर दृष्टि लगाने पर कोई संकट नहीं। पर की दृष्टि ही संकट देने वाली है, अतः मैं पर की दृष्टि हटाकर स्वयं में, स्वयं के लिए, स्वयं को सुखी रखूं। देखो, वस्तु जितनी होती है वे सब शक्ति पिंड ही तो है। क्या कहते हैं, वस्तु यानी द्रव्य, सभी द्रव्य क्या है, अपनी अपनी शक्तियों का पिंड है, अपने अपने गुण पर्यायों का समूह है। तो कहते सभी शक्ति पिंड ही तो है, आत्मा भी वस्तु है, वह भी अनंत शक्तियों का पिंड है। यहाँ तो आत्मा ही है कि नहीं, इस यहाँ से शुरुआत होती है लोगों की, है ना। कहते वो तो अनंत शक्तियों का पिंड है, उन अनंत शक्तियों में आनंद शक्ति भी एक प्रधान शक्ति है। इस आनंद शक्ति का प्रति समय परिणमन होता है, विकृत हो या विकृत, क्योंकि जो शक्ति है तो उसका यहाँ परिणमन चलेगा। यह उपादान निमित्त के प्रसंग वाली बात है, किंतु सर्वत्र वह आनंद मिला स्वयं के आत्मा में ही। सुख यही इसी निज आत्मा में है, अन्यत्र सुख ढूंढना ही दुख पैदा कर लेना है। क्योंकि जो जहां है वहीं से मिलेगा। अतः बाह्य की उलझन छोड़कर मैं अपने आप में ही विश्राम पाऊं। अब आगे कहते हैं कि वस्तु का स्वरूप स्वतंत्रता है, तब किसी को कौन क्या करेगा। प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है तो अन्य दूसरे का कुछ करता, ये बात कहां से आई, ये कह रहे हैं। 7 नंबर का श्लोक, स्वातंत्र्यं वस्तुनो रूपं तत्र कः किं करिष्यति, हानिर्मे हि विकल्पेषु स्यां स्वस्मै स्वे सुखी स्वयं। इस आसन है ना, वस्तु की स्वतंत्रता वस्तु का स्वरूप है, स्वातंत्र्यं वस्तुनो रूपम्। कि वस्तु की स्वतंत्रता ही वस्तु का स्वरूप है, उस स्वरूप में कौन क्या करेगा, यानी अन्य उसको परिणमाएगा कि उसको रक्षा करेगा, उसकी क्या करेगा क्या। निश्चय से विकल्पों के कारण ही मेरी हानि है, हानिर्में ही विकल्पेषु। अब स्वातंत्र दृष्टि वाला होता हुआ मैं अपने में, अपने लिए स्वयं सुखी हूँ। स्वातंत्र दृष्टि वाला यानी प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, ऐसी जब मैं मान्यता करूंगा तो मैं अपने में ही, मेरे में ही रहकर सुखी हो जाऊंगा। वस्तु का जो स्वरूप है वह स्वतंत्र है। स्व का मतलब हुआ अपना, जैसे हिंदी में कहते हैं कि तुम्हारा अपना, उसने अपना काम किया, यानी उस स्व का किया, अपना किया। उसी प्रकार सब स्व के अर्थात अपने तंत्र है, स्वतंत्र अपने तंत्र के। इसका उन्होंने स्वतंत्र शब्द के दो फोड़ कर दिए, स्वतंत्र, स्व यानी अपना, तंत्र अपना तंत्र, यानी प्रत्येक वस्तु अपने अधीन है, क्योंकि वस्तु तो द्रव्य गुण पर्याय में रहती है, उसमें वसती है उसकी, इसलिए उसको वस्तु कहा ना। प्रत्येक वस्तु अपने अधीन है उसके स्वयं के, क्योंकि वस्तु तो द्रव्य गुण पर्याय में रहती है। अन्य कोई क्या कर देगा, कुछ भी तो नहीं कर सकता। जो वस्तु स्वतः सिद्ध है उसका वर्णन करना कठिन है। चीज है तो उसमें परिणति होती रहती है, चीज है यानी वस्तु है, द्रव्य है तो उसमें परिणमन होता रहेगा। वस्तु द्रव्य क्षेत्र काल और भावात्मक होती है। आशा बहन इसको क्या कहेंगे, काल भाव उसको क्या कहते हैं? स्वचतुष्ट। वस्तु द्रव्य क्षेत्र काल और भावात्मक होती है, वो अपने चतुष्टय रूप से होती है, पर के रूप से नहीं होती। द्रव्य गुण व पर्याय का पिंड है, यानी वस्तु क्या है, द्रव्य गुण पर्याय का पिंड है, या द्रव्य गुण व पर्याय का पिंड है ऐसा भी कहेंगे। द्रव्य क्या है, गुण और पर्याय का पिंड है। व्यवहार में तो पुद्गल को उठाकर दिखा देते हैं कि यह द्रव्य है, अन्य द्रव्यों को जानने का उपाय ऊपरी नहीं है। इस प्रकार एक पिंड रूप से जो वर्णन किया जाता है उसमें जो बताया गया यह हुआ पिंड वस्तु। प्रदेशों की अपेक्षा जो वर्णन होवे वह होगी क्षेत्र वस्तु। क्या कहें, पहले द्रव्य बताए ना, कि पहले एक वस्तु को कोई फुटगल को उठाकर बताए यह यह है, यह द्रव्य, तो यह द्रव्य हुआ। अभी उसके जो कहेंगे उसका पिंड रूप है तो उसका ये पिंड वस्तु बताया। प्रदेशों की अपेक्षा बताए तो क्षेत्र वस्तु, पर्यायों की अपेक्षा जो वर्णन है वह काल वस्तु कहलाती है, और शक्तियों की अपेक्षा बताना भाव वस्तु है। यानी द्रव्य को बताना है तो उसका द्रव्य क्षेत्र काल और भाव होता है, इतनी बात है। जैसे एक आदमी का वर्णन करना है वह कैसा है, यह एक अमुक गांव का मुखिया है, यह हुई पिंड रूप दृष्टि। लंबा है 5 फुट और पतला है, इस प्रकार हुई क्षेत्र की दृष्टि। अमुक रंग का है, यह हुआ व्यंजन पर्याय उनको लेकर। घमंडी है या क्रोधी है अथवा शांत परिणामी है, यह हुआ गुण पर्याय उनको लेकर। काल अपेक्षा से वर्णन, उनकी शक्ति का गुण का वर्णन भाव दृष्टि की अपेक्षा से है। जैसे पुस्तक हाथ में लेकर कहा कि यह पुस्तक है तो यह बताना हुई द्रव्य दृष्टि। यह इतनी लंबी इतनी चौड़ी है, यह हुआ क्षेत्र की अपेक्षा। यह पुस्तक पुरानी है या अमुक रंग की है, ऐसा वर्णन काल दृष्टि की अपेक्षा हुआ। काल ने उसके वो पर्याय, इसके अमुक तत्व लिखा है, इस प्रकार गुणों का वर्णन भाव दृष्टि अपेक्षा से है। इसी चतुष्टय के कारण इनके 4 नाम भी पड़ गए हैं। द्रव्य की अपेक्षा नाम है पदार्थ, क्षेत्र की अपेक्षा नाम है अस्थिकाएं। काल की अपेक्षा नाम है द्रव्य, द्रवता है द्रव्य, और भाव की अपेक्षा नाम है तत्व। द्रव्य की अपेक्षा पदार्थ, क्षेत्र की अपेक्षा अस्थि का है, काल की अपेक्षा द्रव्य, भाव की अपेक्षा तत्व। तो प्रत्येक पदार्थ इनसे सहित है। जैसे काल द्रव्य में घटाना है, यह द्रव्य तो है ही, प्रदेश एक ही सही, उसकी अपेक्षा क्षेत्र हुआ। काल दृष्टि से काल भी है, काल में रहने वाले जो गुण है वह भाव दृष्टि हुई। आत्मा में घटा लो, आत्मगुण पर्यायों का पिंड हुआ आत्मा पदार्थ। कौन से गुण पर्याय, तो आत्मा के अपने स्वरूप। आत्मगुण पर्यायों का पिंड हुआ आत्मा पदार्थ, निज असंख्यात प्रदेशों में विस्तृत हुआ आत्मा अस्थिकाय। आत्मा की पर्यायों से परिणत हुआ यह आत्मद्रव्य, और आत्मगुणों में तन्मय स्वभाव मात्र हुआ यह आत्मतत्व। देखो अपना चतुष्टय ही अपने में है, पर के चतुष्टय का अंश भी अपने में नहीं है, और अपना पूरा या अपना चतुष्टय अपने में है। अतः इससे यही सिद्ध हुआ कि प्रत्येक पदार्थ अपना स्वामी है, अपने में ही रहता है, अपने में ही परिणमन करता है। तब कोई अन्य में क्या कर सकेगा, क्या कर देगा? इसलिए प्रत्येक पदार्थ अपना स्वामी है, अपने में ही रहता है, अपने में ही परिणमन करता है, कोई अन्य में क्या कर देगा। कई प्राणी ऐसे हैं जो तत्व को जानते नहीं, और कई ऐसे हैं जो जानकर भी उसमें नहीं रमते, केवल ज्ञात करते रहते हैं, यानी जानते रहते हैं। कल्याण की जो बात है उसके किए बिना तो गुजारा नहीं होगा, यह निश्चित है। बड़े दुख की बात है, यह प्राणी मोह आदि में भी पड़ा है और दुख भी मानता जाता है। जिस प्रकार मिर्च खाता भी जाता है और मना भी करता है, मिर्च मत डाला करो, और सीसी भी करता जाता है, आनंद भी लेता जाता है। इसी प्रकार बाह्य पदार्थों में राग भी कर रहे हैं, दुख भी मान रहे हैं। अतः जो करने में आ रहा है, आ पड़ा है, आवे, उसके बिना भी तो अभी गुजारा नहीं है। किंतु साथ ही साथ यह अंतरंग में अवश्य बात उठनी चाहिए, मैं तो मात्र अमूर्त चैतन्य शक्ति स्वरूप हूँ, यह तो स्वयं में स्वयं ध्रुव है। श्रद्धा ही काम बनाती है, बात यही ठीक है। प्रतिमा भी ले लो, सब कुछ कर लो, किंतु बिना श्रद्धा के न मर्म का स्पर्श होगा, न ज्ञान ही होगा। प्रतिमा ले लो यानी कुछ अनुव्रता दी ले लो, या पांचवें गुणस्थान संबंधी। बहुत से विवेकी जन गृहस्थी में रहकर भी यही सोचते हैं, कैसे मैं इन उपयोगों को छोड़ूं? ज्ञानी यही सोचता है, मुझसे ये सब कैसे छूटे? और बहुत से प्राणी घर से बाहर रहकर भी घर की दृष्टि करते हैं, पत्नी की वांछा रखते हैं। सो यह घर में रहकर बाहर की इच्छा रखना, यह सब अर्ध विवेक से होता है। अर्ध विवेक उसे कहते हैं कि ज्ञान तो है पर दृढ़ता नहीं हुई। छोड़ने पर ग्रहण करने की इच्छा और ग्रहण करने पर छोड़ने की इच्छा। जैसे किसी को कहो कि भैया रात्रि के भोजन का त्याग कर दो, तो वो उत्तर देता है कि छोड़ने से खाने को जी करता है। वैसे रात्रि को खाना नहीं खाए 5 महीने व्यतीत हो गए। क्या कहते हैं, 5 महीने मैंने रात को नहीं खाया परंतु बहुत जी हो रहा है, कह रहा। अतः योग में वियोग की बुद्धि तथा वियोग में संयोग की बुद्धि, यही अर्ध विवेक में होता रहता है। यानी त्याग भी करता है परंतु उसकी इच्छा बनी रहती है, कहना चाहते हैं। ऐसे त्याग से क्या खान प्रयोजन? यही रुकेंगे अभी हम। जावानी के ज्ञान से तुझे लोकालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो। वीरेश भाई,
नमो अर्यंतानम, नमो चित्तानम, नमो आयजनम, नमो वज्जनम, नमो वयसव सावनम, नमो अर्यंतानम, नमो चित्तानम, नमो आयजनम, नमो वज्जनम, नमो वयसव सावनम, नमो अर्यंतानम।